नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य श्रेष्ठतम लक्ष्य सब्बदानं धम्मदानं जिनाति सब्बरसं धम्मरसो जिनाति सब्बरतिं धम्मरति जिनाति तणहक्खयो सब्बदुःखं जिनाति। धर्म का दान सब दानों को जीत लेता है, अर्थात सब दानों में श्रेष्ठ है। धर्म का रस सब रसों को जीत लेता है, अर्थात सब रसों में श्रेष्ठ है। धर्म में रमण करना सभी रमण सुखों को जीत लेता है, अर्थात सब रतियों में श्रेष्ठ है। तृष्णा का क्षय सब दुखों को जीत लेता है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ है। धम्मपद गाथा 354। जेतवन में रहते हुए बुद्ध ने यह प्रवचन 33 देवताओं के राज्य के महाराजा शक्र, पाली में शक अर्थात इंद्र को दिया था। इन देवताओं की एक सभा हुई थी जिसमें 4 प्रश्न उठाए गए। उपहारों में कौन सा उपहार सबसे उत्तम है? स्वादों में कौन सा स्वाद सबसे उत्तम है? सबसे बड़ा आनंद कौन सा है? तृष्णा के विनाश को क्यों अन्य सभी बातों से सर्वोच्च होने के लिए कहा गया है? देवताओं में से कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं था। 12 वर्षों तक वे 10,000 चक्रवालों अर्थात विश्वतंत्रों में प्रत्येक स्थान पर इनके उत्तर की तलाश करते रहे। अंत में वे चतुर महाराजिक देवताओं के राज्य में पहुंचे। ये चतुर महाराजा चारों दिशाओं अर्थात उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के संरक्षक हैं। जब उन्होंने ये प्रश्न सुने तो सुझाव दिया कि देवताओं के राजा शक को इनका उत्तर पता होगा, किंतु जब उन्होंने शक से संपर्क किया तो उन्होंने कहा, मित्रों, केवल बुद्ध ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इस समय बुद्ध कहाँ रह रहे हैं? उन्होंने शक को बताया कि बुद्ध जेतवन में रह रहे थे, अतः वे बुद्ध से पूछने गए। शक ने सभी 4 प्रश्नों को बुद्ध के समक्ष रखा और बुद्ध ने उत्तर दिया, महाराज, आपने ठीक कहा है। मैंने सभी पारमिताओं को पूरा किया जिनकी पराकाष्ठा 5 महान उपहारों को देने में हुई और मुझे सर्वज्ञता प्राप्त हुई, जिससे कि मैं इस प्रकार के संदेहों का समाधान कर सकूं। उत्तर यह है, सभी उपहारों में परम सत्य अर्थात धम्म का उपहार सर्वोच्च है। धम्म का स्वाद सभी स्वादों में सर्वोच्च है। धम्म का आनंद सभी आनंदों में सर्वश्रेष्ठ है। और तृष्णा के विनाश द्वारा ही मनुष्य पूर्ण जागृति अर्थात अरहत्व प्राप्त कर सकता है, अतः यह अन्य सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। और बुद्ध ने वह गाथा घोषित की जिसे हमने इस प्रवचन के प्रारंभ में उद्धृत किया। यह संसार कारण कार्य विधान पर आधारित है। प्रत्येक परिणाम के पीछे कोई न कोई कारण होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें कष्ट झेलना होगा। यदि ऐसा संभव हो कि हम सदैव अच्छे ही कर्म करें तो हमें कष्ट नहीं उठाना होगा। कुछ ऐसे अच्छे कार्य हैं जिनके करने से अपार सांसारिक सुख प्राप्त हो सकता है। यदि हम एक पक्षी को भोजन दें तो हमें अपार लाभ मिलेगा। यदि हम एक मनुष्य को भोजन दें तो हमें और भी अधिक लाभ मिलेगा। जिसको हम दान दे रहे हैं, विशुद्धि में जितना ही अधिक वह व्यक्ति विकसित होगा, हमें उसका उतना अधिक प्रतिफल मिलेगा। ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने किसी प्रत्येक बुद्ध, पाली में पच्चेक बुद्ध को, किसी प्रशिक्षक बुद्ध को या उनके प्रमुख शिष्यों को चीवर दान दिया। लोगों ने भूखों को भोजन, विहार तथा औषधियों का महान दान दिया है। इस प्रकार के दान से हमें कितना लाभ मिल सकता है, इसकी कल्पना भी हमारे लिए असंभव है। किंतु इस गाथा में हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध द्वारा परम सत्य अर्थात धम्म के विषय में सिखाया गया चार पंक्तियों का एक ही छंद इन सभी अन्य उपहारों में असीम रूप से अधिकतम मूल्यवान है। ऐसा इसलिए है कि धम्म के माध्यम से हम सांसारिक सुखों के भी ऊपर जा सकते हैं। इस अनुबंधित संसार में हम कितने ही सुखी क्यों न हों तथा कितने समय तक सुखी क्यों न हों, अंततः उस सुख का अंत हो जाएगा। अंततो गत्वा हमें दुख भोगना पड़ेगा। केवल बुद्ध धर्म के माध्यम से ही इस दुख की समाप्ति हो सकती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धम्म का स्वाद अन्य सभी स्वादों में श्रेष्ठतम क्यों है। इसके अंतर्गत जागृति के वे 37 घटक भी सम्मिलित हैं जिनसे निब्बान प्राप्त होता है, तथा निब्बान इस अनुबंधित लोक से परे अननुबंधित एवं दुख रहित है। तथा जितना अधिक हम धम्म के स्वाद का आनंद लेते हैं, उतना ही अधिक यह स्वादिष्ट होता जाता है। जबकि समय के साथ अन्य सांसारिक स्वाद बासी पड़ने लगते हैं। धम्म का आनंद सभी आनंदों में श्रेष्ठ है, क्योंकि जब हम उसमें आनंदित होते हैं तो दुख से मुक्ति के लिए परिश्रम करने की प्रेरणा भी मिलती है। अंत में तृष्णा का विनाश दुख का वास्तविक अंत है। लक्ष्य तक अर्थात पूर्ण जागृति या अरहत्व पद तक पहुंचने की यही वास्तविकता है, और यह भी अन्य वस्तु से महानतर है। जब भगवान बुद्ध ने देवताओं को धम्म शिक्षा देनी पूरी की तो शक ने उनको नमन किया और उनसे अनुरोध किया, भंते चूंकि धम्मदान इतना बहुमूल्य है, क्यों न आप इस दान के पुण्य को हम सभी में बांटते। भविष्य में आप जब भी भिक्षु समुदाय को दान दें तो उसके पुण्य को हम में भी बांटें। अतः बुद्ध ने भिक्षु समुदाय को एक साथ बुलाया और उन्हें बताया, भिक्षुओं, आज से अब जब भी किसी विशेष अवसर पर कोई प्रवचन हो या किसी साधारण अवसर पर प्रवचन हो अथवा अनुमोदन के शब्दों का पाठ ही हो, तो आपको चाहिए कि उससे अर्जित पुण्य को आप सभी प्राणियों में बांटें। अतः इसी कारण हम प्रवचन या ध्यान साधना के पश्चात उससे अर्जित पुण्य को सब में बांटते हैं, क्योंकि ध्यान भी धम्म साधना है तथा महान पुण्य के योग्य है। आपको स्मरण होगा कि हमने अच्छे या बुरे कर्मों को करने में मन के महत्व पर जोर दिया है। कुछ योनियों में अच्छा कर्म करना अत्यंत कठिन है, किंतु दूसरों के भले कामों से आह्लाद एवं सहानुभूतिपूर्ण आनंद संभव है। चूंकि यह एक मानसिक क्रिया है, अतः यह बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसे वाणी द्वारा सुदृढ़ किया जा सकता है। इसीलिए जब आचार्य पुण्य बांटते हैं तो छात्र ठीक कहा या अच्छा किया पाली में साधु 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 कहकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ज्योतिक की कथा। किस प्रकार धम्म का स्वाद सभी स्वादों में सर्वोच्च है, इसका एक उदाहरण हमें ज्योतिक पाली में ज्योतिक की कथा में मिलता है। ज्योतिक की पारमिताएं महान थी। उन्होंने अतीत के बुद्धों को बहुत बड़े बड़े उपहार दिए थे। जब वे गौतम बुद्ध के समय पैदा हुए तो वे अत्यंत समृद्ध थे। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वे बहुमूल्य हीरे जवाहरात से बने महल में रहते थे। सम्राट बिंबिसार ने ज्योतिक के महल के बारे में सुना तो उनमें इस आश्चर्यजनक महल को स्वयं देखने की इच्छा हुई। सम्राट अपने बेटे राजकुमार अजातशत्रु के साथ वहां गए। जब उन्होंने यह सारा वैभव देखा तो अजातशत्रु में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई तथा उन्होंने अपने पिता से कहा, कैसे आप एक साधारण नागरिक को राजा से बड़े वैभव में जीने के लिए अनुमति दे सकते हैं? आपको ज्योतिक के महल को राज्याधीन कर लेना चाहिए। किंतु सम्राट बिंबिसार भगवान बुद्ध के एक निष्ठावान शिष्य थे तथा उन्होंने स्वयं जागृति का पहला चरण प्राप्त कर लिया था। वे समझते थे कि ये सारा वैभव ज्योतिक के अतीत के पुण्यों का परिणाम था और कोई भी उनसे ले नहीं सकता। एक दिन ज्योतिक विहार में गए और उन्होंने बुद्ध को प्रवचन देते सुना। उन्होंने अपना सारा धन पीछे छोड़कर एक भिक्खु बनने का निर्णय लिया। अतः वे मात्र चीवर एवं पात्र के साथ एक भिक्खु की तरह रहते थे और जब उन्हें अर्हत्व प्राप्त हुआ तो उनकी सारी पूर्व संपदा लुप्त हो गई। एक दिन उनके कुछ साथी भिक्खुओं ने उनसे पूछा कि क्या वे अपने महल या अपनी पत्नी की कमी का अनुभव नहीं करते। जब उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया तो वे भिक्खु भगवान बुद्ध के पास गए और उनसे बोले, भंते, इस भिक्खु ने एक झूठ बोला है। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि ज्योतिक अपने पूर्व जीवन की कमी का अनुभव नहीं करता था। किंतु भगवान बुद्ध ने उन्हें बताया, भिक्खुओं, यह बिल्कुल सच है कि मेरे पुत्र को इन बातों की कोई आकांक्षा नहीं है। अतः हम देख सकते हैं कि धम्म का स्वाद और आनंद सर्वश्रेष्ठ उच्चतम एवं उत्कृष्ट है। पांच बाधाएं या निवरण। ऐसी वस्तु जो सर्वोत्तम एवं सर्वोत्कृष्ट हो उसे प्राप्त करना सरल नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे जैसे आप अपनी साधना में रत होते जाते हैं तो आप पाते हैं कि मन को प्रशिक्षित करना अत्यंत कठिन है। कठिनाइयां कई हैं, विशेष रूप से पांच जो बाधाओं या निवरण शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, वे हैं: एक, कामच्छंद; दो, व्यापाद अर्थात दुर्भावना; तीन, स्त्यान एवं मृद्ध पाली में थीनमिद्ध अर्थात शारीरिक एवं मानसिक आलस्य या अकर्मण्यता; चार, औद्धत्य एवं कौकृत्य पाली में उद्धच्य कुकुच्य अर्थात अनवस्थिता और खेद; तथा अंत में पांच, विचिकित्सा पाली में विचिकित्सा अर्थात आशंका अथवा संदेह। इन पिछले कुछ दिनों में मन को केंद्रित करने की साधना करते हुए संभवतः आपको इनमें से कुछ या सभी बाधाओं का सामना करना पड़ा है। आपके पास पहले से ही इन बाधाओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा साधन है। आपके पास अपनी श्वास तथा नाक के नीचे वह स्थान बिंदु है जहां आप अपना ध्यान टिका सकते हैं। जब जब आपको आभास हो कि निवरण आ गए हैं तो उनको विचलित करने के लिए कुछ गहरी श्वास का उपयोग कर सकते हैं। जब तक हम सांसारिक भोगी हैं अर्थात जागृति के पहले चरण तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक हम इन बाधाओं या निवरणों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते। किंतु जितने समय तक मन केंद्रित होता है वे निवरण वहां नहीं होते। एक अच्छा और एक बुरा विचार दोनों एक ही समय मन में नहीं हो सकता। केवल एक ही विचार एक समय में हो सकता है। चूंकि मन इतना तीव्र है, ऐसा लग सकता है कि दो बातें एक ही साथ हो रही हैं, किंतु वास्तव में प्रत्येक विचार अकेला ही होता है। इस प्रकार निवरण के संज्ञान की क्रिया ही उस क्षण के लिए निवरण का उन्मूलन कर देती है। निवरण को जानने या पहचानने वाला विचार निवरण के उपरांत आता है। यह हमारे लिए अपने मन को वापस खींचकर ध्यान केंद्रित करने का अत्यंत ही उपयोगी पल है। बजाय इसके कि हम उदास या निराश हों कि हमने अपनी एकाग्रता खो दी है, हमें आनंदित होना चाहिए कि हमें उसका पता चल गया। अतः हम अस्थायी रूप से निवरणों का उन्मूलन कर सकते हैं, यह समझते हुए कि उनका अंतिम और पूर्ण उन्मूलन संपूर्ण जागृति प्राप्त करने के माध्यम से ही होगा। किंतु हम जागृति के पहले चरण से ही उनका समापन प्रारंभ कर देते हैं। सोतापन्न होने पर कोई संदेह अवशेष नहीं रहता। उसे संक्षिप्त समय के लिए ही सही परम सत्य का अनुभव होता है तथा उसमें जागृति के लिए अग्रणी पथ के विषय में एवं जागृति तक पहुंचने की संभावना के विषय में कोई संदेह नहीं रहता। जब कोई जागृति के तीसरे चरण अनागामी पथ तक पहुंच जाता है तो सभी कामुक इच्छाओं एवं दुर्भावनाओं का नाश हो जाता है। केवल अंत में ही जब कोई अर्हत प्राप्त करता है तब आलस्य अकर्मण्यता व्याकुलता तथा खेद का समापन होता है। पाली ग्रंथों में पांच निवरणों को चित्त को दूषित करने वाले तथा अंतर्दृष्टि को अयोग्य बनाने वाले विघ्न बताया गया है। यदि साधक अपने निवरणों पर विजय नहीं प्राप्त करता तो उसकी अंतर्दृष्टि में सुदृढ़ता एवं शक्ति का अभाव होगा तथा उसके लिए अपनी भलाई, दूसरों की भलाई और दोनों की भलाई जान पाना असंभव हो जाएगा। उसके लिए अति मानवीय विशिष्ट उपलब्धि की अवस्था प्राप्त कर पाना या मुक्ति के लिए ज्ञान और दृष्टि का अनुभव कर पाने में सक्षम हो पाना नहीं हो सकेगा। यदि वह पांचों निवरणों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसकी अंतर्दृष्टि शक्तिशाली होगी तथा वह अपनी, दूसरों की एवं दोनों की भलाई के लिए क्या अच्छा है उसे पहचानने में सक्षम हो जाएगा। वह मुक्ति प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा। कामेच्छा ऐसे पानी की तरह है जिसमें कई रंगों का मिश्रण हो। दूसरे शब्दों में, जो हमें सुंदर प्रतीत होता है हम उससे आकर्षित होते हैं। दुर्भावना या द्वेष उबलते पानी जैसा है। जब हम घृणा तथा द्वेष से भरे होते हैं तो उष्णता होती है और हम उत्तेजित होते हैं। शिथिलता, आलस्य, अकर्मण्यता एवं तंद्रा की अनुभूति काई से आच्छादित पानी की तरह है। ऐसा लगता है जैसे हम अवरुद्ध हो गए हों। अनवस्थितता या व्याकुलता एवं खेद तेज हवा की मार से आंदोलित पानी जैसे है। यहाँ खेद का अर्थ है बुरे कर्मों को करने के पश्चात अथवा अच्छे कर्मों की उपेक्षा करने के कारण असंतोष या पश्चाताप की अनुभूति। इस व्याकुलता तथा पश्चाताप के साथ हम शांत नहीं बैठ सकते। अंत में संदेह पंकिल मैले पानी की तरह है। जब हम में संदेह होता है तो हम स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। हम पाते हैं कि हम ढुलमुल हो गए हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। हमें पता नहीं कि क्या मुझे यह करना चाहिए या फिर क्या मुझे वह करना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे हम दो में विभाजित हो गए हों और जिस विषय पर हमें संदेह है उसके बारे में हम जितना ही अधिक सोचते हैं समस्या उतनी ही कठिन होती जाती है। हम अब कोई भी प्रयास नहीं करना चाहते। अब हम यह सुनिश्चित नहीं कर पाते कि क्या अच्छा कार्य है तथा क्या बुरा और हमें क्या करना चाहिए। वस्तुओं के विषय में हम अब उनके सही मूल्य के अनुसार निर्णय नहीं ले पाते। हमें बुद्ध के विषय में, आचार्य के विषय में, सत्य के विषय में तथा उनके विषय में जो बुद्ध की शिक्षा को जीवित रखे हुए हैं, उन सब के विषय में संदेह होता है। हमें कारणों एवं उनके परिणाम के बारे में संदेह होता है। संक्षेप में, हमारी दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है। तो एक साधक पांचों निवरणों से छुटकारा कैसे पा सकता है? पाली ग्रंथ हमें बताते हैं, इस संबंध में साधक जिसमें कामेच्छा, द्वेष, आलस्य एवं अकर्मण्यता, व्याकुलता एवं पश्चाताप या संदेहात्मक उलझन है, वह जानता है मुझ में कामेच्छा, द्वेष, आलस एवं अकर्मण्यता, व्याकुलता एवं पश्चाताप या संदेहात्मक उलझन है। वह जानता है कि कैसे प्रत्येक निवरण उत्पन्न होता है तथा कैसे उसमें रहता है। वह जानता है कि उत्पन्न होने के पश्चात कैसे प्रत्येक निवरण का उन्मूलन होता है तथा वह यह भी जानता है कि भविष्य में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब ये निवरण उदय ही नहीं होंगे। आनापान के साथ हम इसे अत्यंत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम यहाँ बैठकर अपना ध्यान नाक के नीचे एक बिंदु पर, आश्वास एवं प्रश्वास पर टिकाने का प्रयास करते रहते हैं। अचानक हमारा मन कहीं और होता है। यही निवरण की उत्पत्ति को जानना है। हमें उस विचार या भावना विशेष का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। हमें उसके मूल में पहुंचने के लिए बचपन में या अपने पिछले जीवन में, यदि हम अपने पिछले जीवन को भी जान सकते हैं, जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र यह समझ लेना पर्याप्त है कि हमारे ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों के बावजूद ये निवरण कैसे स्वतः उदय हो जाते हैं और हम कैसे उन्हें समाप्त कर सकते हैं। कुछ सचेतन एवं साभिप्राय श्वास और वे लुप्त। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वे अभी भी विद्यमान हैं, जैसे कोई प्रबल इच्छा उत्पन्न हो सकती है। हम इसका संज्ञान लेते हैं और कुछ गहरी श्वास लेते हैं। उस क्षण के लिए, संभवतः मात्र एक क्षण के लिए, हमारा चित्त निवरणों से मुक्त होता है। यदि वह निवरण एक प्रबल निवरण है तो कोई उसी जैसा विचार या भाव, उसका जुड़वा उत्पन्न हो सकता है। तो हमें पुनः साभिप्राय श्वास लेना प्रारंभ करने की आवश्यकता होगी, किंतु हमें आश्वस्त होना चाहिए कि इस प्रकार हम निवरणों की पूरी श्रृंखला को नष्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही निवरण बारंबार वापस आ रहा हो। और हम कैसे इन निवरणों के उत्पन्न होने से बच सकते हैं? यदि हम पहले दो कदमों को स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं तो अंतिम चरण सति भी स्पष्ट हो जाएगा। हमने कई बार कारण कार्य विधान का उल्लेख किया है। जिस प्रकार हमारा वर्तमान हमारे अतीत के कर्मों से अनुबंधित है, उसी प्रकार हमारा भविष्य भी हमारे वर्तमान के कर्मों से अनुबंधित होता है। यही और इसी क्षण की समुचित एकाग्रता की साधना ही भविष्य में पांच निवरणों के उत्पन्न होने से बचने का एकमात्र मार्ग है। यदि हम वास्तव में दुख का अंत करना चाहते हैं तो हमें इसका एहसास होगा कि यह काम कितना महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय निरंकुश लोलुपता या कामेच्छा से अभिभूत है, वह ऐसे कार्य करेगा जिन्हें उसे नहीं करना चाहिए, तथा जिन कार्यों को उसे करना चाहिए उनकी वह उपेक्षा करेगा। इस कारण उसकी प्रतिष्ठा और उसकी खुशी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय दुर्भावना, आलस्य एवं अकर्मण्यता, व्याकुलता एवं पश्चाताप तथा संदेहात्मक उलझन से अभिभूत है, वह ऐसे कार्य करेगा जिन्हें उसे नहीं करना चाहिए, तथा जिन कार्यों को उसे करना चाहिए उनकी वह उपेक्षा करेगा। इस कारण उसकी प्रतिष्ठा और उसका सुख नष्ट हो जाएगा। किंतु एक आर्य शिष्य जिसने मन के इन पांच दोषों को देखा है, वह उनका त्याग कर देगा। उसे माना जाएगा कि वह एक महान ज्ञानी, प्रचुर विवेकवान, स्पष्ट दृष्टा तथा अच्छी तरह से प्रज्ञा संपन्न है। अन्य स्थान पर भगवान बुद्ध ने कहा है कि निवरण उन पांच अशुद्धियों की तरह हैं जिनके कारण स्वर्ण अपना लचीलापन खो देता है और काम करने लायक नहीं रहता। उसमें दमक का अभाव हो जाता है, वह भंगुर हो जाता है तथा उसे गढ़ना कठिन हो जाता है। स्वर्ण की ये पांच अशुद्धियां वे धातुएं हैं जो उसमें मिली होती हैं, अर्थात लोहा, तांबा, टिन, सीसा तथा चांदी। किंतु यदि इन हीन धातुओं को स्वर्ण से अलग कर दें तो वह लचीला, काम करने योग्य, दमकीला एवं दृढ़ हो जाता है तथा उससे कोई भी आभूषण गढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार जब मन में 5 अशुद्धियां या निवारण होते हैं तो वह लचीला तथा काम करने योग्य नहीं रहता। उसमें दमकीली स्पष्टता तथा दृढ़ता का अभाव हो जाता है। वह दूषणों के उन्मूलन के लिए अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। किंतु जब मन 5 निवारणों से मुक्त होता है तो वह लचीला तथा काम करने योग्य होगा। उसमें दमकीली स्पष्टता तथा दृढ़ता आएगी तथा वह दूषणों के उन्मूलन के लिए अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करेगा। मन को किसी भी मनोदशा की ओर, जिसे उच्च मानसिक संकायों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, निर्देशित करना संभव हो जाएगा तथा यदि अन्य शर्तें पूरी हो जाएं तो व्यक्ति में उच्च अवस्था प्राप्त करने की क्षमता उपलब्ध हो जाएगी। अब आप अपने आप से कह रहे होंगे, एक निवारण और है, इन सारी पीड़ाओं का क्या? यदि कोई पीड़ा न होती तो मैं ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होता। किंतु यह स्मरण रहे कि हमने सदैव इस बात पर जोर दिया है कि मन कितना महत्वपूर्ण है तथा आपका मानसिक दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप 5 निवारणों को देखें तो पाएंगे कि वे मन एवं भावनाओं में होते हैं। समस्या दर्द नहीं है, किंतु उस पीड़ा के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। पीड़ा के कारण हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है या हम व्याकुल हो जाते हैं। हमें स्मरण रहे कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो यह साधना कर रहे हैं। अनेक वर्षों से, अनेक जन्मों से हमारा मन इन निवारणों के प्रभुत्व में रहा है। यदि हम एक क्षण के लिए भी ध्यान को अच्छी तरह केंद्रित कर सके, जिससे मन शांत एवं स्थिर हो जाए, तो यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा महान लाभकारी होगा। तथा हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल में हमारा इस शिक्षा से संपर्क हुआ है। वे जो आर्य हो रहे हैं, एक अवसर पर आदरणीय बेगुसयादा यंगॉन के इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र पर आए। उन्होंने सयाजी उबाखी से पूछा, जिस प्रकार बुद्ध के समय होते थे, क्या वैसे ही आज भी प्राणी जागृत अर्थात आर्य नहीं हो रहे हैं? सयाजी उबाखी ने हाँ में उत्तर दिया। फिर वेगु सयादो ने उनसे पूछा, अधिकांश संख्या में आर्य कौन हो रहे हैं, मनुष्य या देवता एवं ब्रह्मा? सयाजी उबाखी ने उत्तर दिया कि जो आर्य होते जा रहे हैं उनमें अधिकांश उच्च लोकों के देवता एवं ब्रह्मा होंगे। आप देखेंगे कि 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपनी मृत्यु के समय पूर्वानुमान किया था कि 4 असंख्येय तथा 20,000 अरब प्राणी अभी भी बचे थे जो जागृति के पहले चरण तक भी नहीं पहुंचे थे तथा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उन प्राणियों के लिए बुद्ध की शिक्षा 5,000 वर्षों तक विद्यमान रहेगी। इस संख्या की कल्पना करना भी अत्यंत कठिन है। एक असंख्येय एक के पश्चात 140 शून्य का होता है। जो आर्य होंगे उनमें से अधिकांश विमुक्तिकाल, पाली में विमुक्तिकाल में होंगे। वह काल भगवान बुद्ध की मृत्यु के 2500 वर्ष पश्चात प्रारंभ होता है। यही कारण है कि सयाजी उबाखी ने वेबू सयादो के पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया था। इस बात को समझने के लिए कि अधिकतम आर्य देवता एवं ब्रह्मा क्यों होंगे, हमें विश्व की जनसंख्या पर दृष्टि डालनी होगी, जो मैं समझता हूँ कि लगभग 7 अरब ही है। मानवलोक में लोगों के एक अल्पांश मात्र की ही आर्य बनने की संभावना है। मातिक माता की कथा अपनी पुस्तिका बौद्ध धर्म है क्या, व्हाट बुद्धिज्म इज, में सयाजी उबाखी ने कहा है, दूसरों के असंतुलित मन को संतुलित करने के लिए संतुलित मन की आवश्यकता है। उन्होंने बुद्ध के शब्दों को उद्धृत किया, जैसे एक तीर बनाने वाला अपना बाण बिल्कुल सीधा बनाता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने चंचल एवं कंपायमान विचारों को, जिनका प्रबंधन या नियंत्रण कठिन है, सीधा करता है। IMC या अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र यंगॉन में बर्मी शिष्यों को दिए एक प्रवचन में सयाजी ने बुद्ध के समय की एक गृहिणी की कथा सुनाई, जो सचमुच में समुचित रूप से साधना करने में सक्षम थी। एक बार 60 भिक्षु भगवान बुद्ध के पास गए और उनसे साधना लगाने के लिए अनुमति मांगी। बुद्ध ने उन्हें विधि सिखा दी तथा वे अभ्यास के लिए किसी उपयुक्त निवास स्थान की तलाश के लिए चल पड़े। वे मातिक गाम नामक गांव पहुंचे तथा उसमें भिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश किया। उस गांव में मातिक माता नामक एक धनी महिला थी। उनके पास बहुत बड़ी भूसंपत्ति थी तथा उन्होंने आदरपूर्वक भिक्षुओं से अनुरोध किया कि वे वहां रहकर अपनी साधना करें। उन्होंने भिक्षुओं के लिए एक विहार का निर्माण करवाकर उन्हें प्रस्तुत किया तथा उनके लिए भोजन प्रदान करने का भी बीड़ा उठाया। अतः वे भिक्षु उनके द्वारा निर्मित विहार में ठहर गए, किंतु वे आपस में इस बात पर सहमत हुए कि बेहतर ध्यान लगाने के लिए किसी भी दो भिक्षु को न तो एक साथ रहना चाहिए और न एक ही स्थान पर ध्यान लगाना चाहिए। कुछ समय बाद मातिक माता ने भिक्षुओं से पूछा कि वे क्या कर रहे थे, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे ध्यान लगा रहे थे। फिर मातिक माता ने उनसे पूछा कि क्यों, और जब उनको बताया गया कि ध्यान लगाने से मन शांत होता है, तो उन्होंने पूछा कि अपने खाली समय में क्या वे भी इसका अभ्यास कर सकती हैं। भिक्षुओं ने बताया कि हाँ, वे भी इसका अभ्यास कर सकती हैं तथा तदनुसार उसकी विधि भी समझाई। उन्होंने कहा कि जब उनको समाधि प्राप्त होगी तब उनका मन शांत एवं स्थिर हो जाएगा तथा अंततः उनमें समुचित प्रज्ञा उदय होगी। अतः उन्होंने अपने घर में एक उपयुक्त स्थान चुना, जहां वे घर के कामकाज समाप्त होने के तुरंत बाद प्रत्येक दिन रात्रि में ध्यान लगाती थी। शीघ्र ही उनका मन शांत हो गया तथा उनके मन में प्रीति, पाली में प्रीति अर्थात संतोष, पसद्धि अर्थात शांति, सुख अर्थात आनंद तथा चित्त एकाग्रता या समाधि उत्पन्न हुई। जैसे जैसे उनकी सती की साधना सतत चलती रही, उनमें विपस्सना का ज्ञान बिना किसी आचार्य के मार्गदर्शन के ही उदय हुआ तथा वे सुतापन्न अर्थात निब्बान की धारा में प्रवेश करने वाली बन गईं। बाद में वे एक अनागामी बन गईं, अर्थात प्रथम तीन मार्ग एवं फल पदों की अवस्था उपलब्ध कर ली। ध्यानावस्था या समाधि के माध्यम से उनमें दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण, पिछले जन्मों के विषय में तथा अन्य लोगों के विचार जान लेने की क्षमता भी प्राप्त हुई। आप ध्यान देंगे कि किसी को भी उनको धम्म के विषय पर व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने बस वही किया जो उन्हें बताया गया था। अन्य लोगों के विचारों को पढ़ने की क्षमता के साथ यह सोचते हुए कि भिक्षुओं ने निश्चित रूप से और भी अधिक प्रगति की होगी, उन्होंने भिक्षुओं की स्थिति जाननी चाहिए, किंतु यह जानकर कि वे अभी सोतापद भी नहीं हो पाए थे, उन्हें आश्चर्य हुआ तथा उनकी प्रगति के अभाव के कारण का पता लगाया। उन्हें पता चला कि वे भिक्षु अपने सुखद गृहस्थ जीवन से संन्यास ले चुके थे तथा भिक्षु जीवन के तमाम अभावों से उनको इतनी चिढ़ हो रही थी कि उनका ध्यान भंग हो जा रहा था। फिर उन्होंने विचार किया, क्या मेरे इन बेटों में अर्हत्व प्राप्ति की प्रवृत्ति है? तो उन्होंने देखा कि हाँ, उनमें है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या उनके आवास उपयुक्त हैं या नहीं। तत्काल उन्हें पता चला कि हाँ हैं। उसके बाद उन्होंने सोचा क्या उनके साथी उचित हैं या नहीं। तत्काल उन्हें पता चला कि हाँ हैं। अंत में उन्होंने इस प्रश्न पर विचार किया, क्या उन्हें समुचित भोजन प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो पता चला कि उन्हें उचित भोजन नहीं मिलता। उसके बाद वे भिक्षुओं को विभिन्न प्रकार की खीर तथा अनेक स्वादों से भरपूर ठोस या कड़े एवं मृदुल आहार प्रदान करने लगे। इस प्रकार पौष्टिक भोजन की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप उनके मन शांत हो गए तथा मन की शांति के फल स्वरूप उनकी अंतर्दृष्टि विकसित हुई एवं अर्हत्व प्राप्त हुआ। सायंकाल में एक भिक्षु अर्हत हो गए तथा साथ में ही अन्य लोगों के विचारों को जानने की क्षमता भी प्राप्त की। उन्होंने दूसरों की प्रगति के विषय में जानना चाहा, तो उन्हें पता चला कि वे भी अर्हत हो गए थे। वास्तव में मातृ माता की दूसरों के विचारों को जान लेने की क्षमता तथा उनकी इच्छाओं को पूरा करने के कारण वे सभी एक साथ अर्हत हो गए। साधना एवं अध्यापन में माँ श्यामा जी का शुभारंभ। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सयाजी उबाखी जैसे प्रतिष्ठित आचार्य की परंपरा के संपर्क में आए हैं तथा हम इस कारण भी सौभाग्यशाली हैं कि माँ श्यामा जी जैसी व्यक्ति हमारी मार पर विजय प्राप्त कर हमारी सही तरीके से ध्यान लगाने में सहायता कर सकती हैं। सयाजी उबाखी के जीवन काल के दौरान अप्रैल 1951 में जब सयाजी उचितिन ने पहली बार सयाजी उबाखी के साथ ध्यान लगाना प्रारंभ किया, तो वे सायं अपने घर अपनी पत्नी अर्थात माँ श्यामा जी तथा अपनी 4 वर्षीय बेटी के पास आते। उनकी बेटी खेलना चाहती थी तथा उनकी पत्नी उनका कुछ समय, किंतु वे अपनी साधना बनाए रखना चाहते थे। अतः उन्होंने माँ श्यामा जी से कहा, आप तो सयाजी उबाखी से मिल ही चुकी हैं, आप उन्हें अपना आचार्य मान सकती हैं तथा मैं आपको ध्यान लगाना से समझाऊंगा। फिर सयाजी उचितिन ने औपचारिकताओं के पश्चात उन्हें तथा अपनी बेटी को आनापान करना समझाया। उनकी बेटी आनापान करते करते उनके बगल में लेट गई तथा कुछ ही मिनटों के बाद सो गई। तो आप देख सकते हैं कि आनापान अनिद्रा के लिए भी अच्छा है। माँ श्यामा जी ने, जैसा कि हम उल्लेख कर चुके हैं, पहले ही दिन लगभग पहले 10 मिनट के भीतर ही प्रकाश देखा। दूसरे दिन सितारे दिखे तथा तीसरे दिन एक बिंब देखा जैसे चांद हो। चौथे दिन सयाजी उचित्तिन ने उन्हें विपस्सना दी तथा वे पूरे शरीर में संवेदनाओं का अनुभव करने लगी। किंतु सयाजी उचित्तिन ने अपनी संवेदनाओं का संज्ञान खो दिया। सयाजी उबाखी बहुधा यह कहानी बताते थे कि कैसे सयाजी उचित्तिन तब अपनी आंखों में आंसू के साथ उनके कार्यालय में आए थे। तो सयाजी उबाखी हंसे और उन खतरों की ओर इशारा किया जो बिना आज्ञा के शिक्षा पारित करने के प्रयास से हो सकते हैं। उन्होंने सयाजी उचित्तिन की साधना के साथ प्रयास किया तथा जिससे संवेदनाओं का संज्ञान पुनः जाग सके। माँ श्यामा जी ने लगभग 2 वर्षों तक अपने घर पर ही साधना की। तब तक 1952 में यंगोन में इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर या अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र की स्थापना हो गई थी। मध्य अप्रैल 1953 में बर्मा में जल महोत्सव की छुट्टियों के दौरान सयाजी उबाखी के कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों के परिवारों के लिए IMC यंगोन में पहला शिविर लगा। श्यामा जी ने उसमें 40 अन्य छात्रों के साथ ध्यान साधना की। उस पहले कोर्स के बाद लगभग 1 महीने तक वे वहाँ साधना करती रहीं तथा उस 1 महीने के भीतर सयाजी उबाखी ने साधना की पद्धति या तकनीक को उन्हें व्यापक रूप से सिखाया। मई 1953 से प्रारंभ कर माँ श्यामा जी ने इसी कार्य के लक्ष्य के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। वे तथा सयाजी उचित्तिन सयाजी उबाखी के साथ मई 1953 से लेकर 19 जनवरी 1971 अर्थात सयाजी उबाखी की मृत्यु के समय तक थे। माँ श्यामा जी ने उस पूरी अवधि में सयाजी उबाखी का हाथ बटाया। उन्होंने केंद्र पर आने वाले सभी छात्रों, बर्मी तथा विदेशी दोनों की सहायता की। उनमें से अनेक ने अपने ध्यान में उल्लेखनीय प्रगति की। वे सयाजी उबाखी के साथ जब जब वे छात्रों का मार्गदर्शन करते थे निरंतर रहती थी। जब बेबू सयादो ने जून 1953 में उस केंद्र का 7 दिवसीय दौरा किया तो बर्मा के एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी भी वहां आए। बेबू सयादा के 3 साधना केंद्र थे अर्थात मंडले के 40 मील दक्षिण में चाउसे, मंडले के 60 मील उत्तर में श्वेबो तथा उनके जन्मस्थान इंजिंगबी टोया में एक और। तो उन्होंने पहली बार इन 3 केंद्रों के बाहर यहाँ अपना दौरा किया था। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष वे लगभग 4 महीने एक एक कर उन 3 स्थानों में बिताते थे। 1953 में उनकी यंगोन की यात्रा के पश्चात अनेक शिष्य, जैसे यह पूर्व सरकारी अधिकारी, चाहने लगे कि वे प्रति वर्ष निचले बर्मा में आए। अतः वे कई शहरों और कस्बों में आकर आशीर्वाद तथा धर्मोपदेश देते जिससे अनेक लोग लाभान्वित होते। जब उन पूर्व सरकारी अधिकारी ने 1953 में सयाजी उबाखी के अंतर्गत अपनी साधना आरंभ की तो उनकी साधना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। जब सयाजी उमवाखी अपने कार्यालय जाते थे तब वे अधिकारी माँ श्यामा जी की देखरेख में रहते थे, जिनसे उनको अपनी प्रगति करने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने सयाजी उमवाखी से कहा, आपकी शिष्या कोई साधारण शिष्या नहीं है, तथा उन्होंने उनका नाम श्यामा अर्थात महिला आचार्य रख दिया। उस दिन से वे श्यामा के नाम से जानी जाने लगी तथा सयाजी उमवाखी ने इसका अनुमोदन किया। अन्य अनेक लोग भी केंद्र पर आए और साधना लाभ का आनंद लिया। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति पाली के विद्वान थे, जिन्होंने उन्हें माँ कहकर संबोधित किया, अतः वे माँ श्यामा के नाम से जानी जाने लगी। 1971 में सयाजी उमवाखी के निधन के पश्चात अनेक पश्चिमी देशों के छात्र भी केंद्र पर आए तथा वे सब भी उनको माँ श्यामा कहकर बुलाते थे। समय के साथ आदर के लिए जी जोड़ दिया गया तथा आज हम उन्हें माँ श्यामा जी कहकर संबोधित करते हैं। आज सुबह केवल इतना ही। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।